बाधन करुणा प्रचुर हेना प्रभु को था गेला महेश पंडित ठाकुर हेना प्रभु को था गेला उद्धार दत्त ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनाता कहाँ दास रघु नाथ पति त पावा मोरा भट जुग कहाँ कबीराज एक काल को था गिला गुरा नटराज पाषाण कोटि वो माथा अनाल पासिबो गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो सब संगीरा संगे जे कहलो बिलास से संग न पाया कांदे नर तम दास जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर नित गौर हरि बोल
शिला महेश पंडित तिरुभावतिथि महाभूतोत्सव की शिला धारण दत्त ठाकुर तिरुभावतिथि महाभूतोत्सव की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो ये जो भजन है इसके शब्द इस प्रकार से हैं, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेके आए क्यों? प्रचुर करुणा के कारण। हेना प्रभु कोथा गेला महेश पंडित ठाकुर, तो ऐसे महेश पंडित कहाँ चले गए? और हेना प्रभु कोथा गेला उद्धारण दत्त ठाकुर। उद्धारण दत्त ठाकुर कहाँ चले गए, कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मेरे स्वरूप। स्वरूप मतलब स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और कहाँ है रूप, रूप मतलब रूप गोस्वामी, और कहाँ है सनातन, सनातन गोस्वामी, कहाँ दास रघुनाथ, दास रघुनाथ, रघुनाथ दास गोस्वामी पतित पावन, जो पतितों को पवित्र करते हैं, कहाँ मोरा भट्टा जुगा, और मेरे दोनों भट्ट कहाँ हैं, दो भट्ट, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज, एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, और एक काले अचानक कहाँ चले गए, गौर वर्ण के नर्तकों के राजा कौन, चैतन्य महाप्रभु, पाषाणे कुटीबो माथा, तो मैं पत्थर में अपने माथे को फोड़ूं, अथवा अनाले पसीबो, अथवा अग्नि में प्रवेश करूं, गोरांगा गुणेरा निधि कोथा गिले पावो, तो गुणों के समुद्र गोरांग को किस प्रकार से मैं प्राप्त करूं, से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास, जितने संगी थे उनके संग में विलास किया, से संग ना पैया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो आज जिन दो महापुरुषों का तिरुभाव दिवस है, ये ब्रजलीला में कृष्ण बलराम के 12 सखाओं में से एक हैं, है ना। तो इसलिए हमने विचार किया कि बोर्ड में कृष्ण लीला के जो 12 सखा हैं वो गौर लीला में किस नाम के हैं, ये हम मतलब समझें। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये विषय है कि कृष्ण लीला में जो 12 सखा हैं, द्वादश गोपाल कहे जाते हैं, मतलब वीआईपी, वीआईपी गोपाल, 12 गोपाल जो बहुत निकट के हैं कृष्ण बलराम के साथ, गोचारण की लीला में या चोरी की लीला में जो वीआईपी गोपाल हैं कृष्ण लीला में, ये गौर लीला में क्या हुए, है ना। तो इनको जो है आप अच्छी प्रकार से समझिए। देखिए, सबसे पहले जो ब्रज लीला में कृष्ण के सखा हैं कौन है, श्रीदामा, श्रीदामा सखा, वो गौर लीला में कौन है, अभिराम गोपाल। तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में अभिराम गोपाल का तिरुभाव दिवस आता है, आविर्भाव दिवस नहीं आता, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे कृष्ण लीला में सुदामा सखा, गौर लीला में कौन है, सुंदर आनंद, है ना। इनका नाम हमारे वैष्णव कैलेंडर में आविर्भाव तिरुभाव कुछ नहीं आता, अब जो भी वो ज्ञात नहीं है उनके बारे में। तीसरे सखा महाबल, हाँ, गौर लीला में कमलाकर पिपलाई, इनका भी हमारे वैष्णव कैलेंडर में नाम नहीं आता है। फिर चौथे सुबल सखा, तो गौर लीला में गौरीदास पंडित, इनका भी तिरुभाव आता है, आविर्भाव नहीं आता वैष्णव कैलेंडर में। फिर पांचवें अर्जुन सखा, ये अर्जुन सखा वो नहीं है, कुरुक्षेत्र वाले अर्जुन नहीं है, हैं, अर्जुन सखा ये गौर ब्रज लीला के अलग ही हैं, अर्जुन सखा। तो गौर लीला में क्या होना है, परमेश्वरी दास, इनका भी हमारे वैष्णव कैलेंडर में तिरुभाव आता है केवल, है ना, साल में एक दिन। फिर छठवें वसुदामा सखा, गौर लीला में क्या है, धनंजय पंडित, इनका भी तिरुभाव आता है हमारे वैष्णव कैलेंडर में, साल में एक दिन आता है केवल। फिर साथ में महाबाहु सखा, महेश पंडित हैं, आज जिनका तिरुभाव आविर्भाव नहीं है हमारे वैष्णव कैलेंडर में, साल में केवल एक ही दिन है, उनको याद करना है, इसलिए हम लोग इनके विषय में सुनेंगे यथासंभव। फिर आठवें स्तो कृष्ण सखा, पुरुषोत्तम दास, है ना, पुरुषोत्तम दास ठाकुर के नाम से हमारे वैष्णव कैलेंडर में का आविर्भाव भी आता है, तिरुभाव भी आता है। फिर नवे लवंग सखा, गौर लीला में काला कृष्णदास, है ना, तो काला कृष्णदास का हमारे वैष्णव कैलेंडर में तिरुभाव आता है, है ना। तो उस दिन कुछ विशेष लीला हुई थी हमारे साथ में, तो वो अगर संभव हुआ तो पल के सुनाएंगे प्रद्युम्न प्रिया प्रभु काला कृष्णदास, क्योंकि आज दो सखाओं का तिरुभाव है, मतलब जो ब्रज लीला में दो सखा थे कृष्ण कृष्ण के, तो इसलिए सखाओं के जो है चर्चा में किसी अन्य सखा की भी चर्चा हो सकती है। फिर दसवें हैं दामा सखा गौरलीला में पुरुषोत्तम नागर, इनका भी नाम हमारे वैष्णव कैलेंडर में नहीं है। ग्यारहवें सुबाहु सखा गौरलीला में उदाहरण दत्त ठाकुर, जिनका आज क्या है आज आतुर्भाव है, इनका आविर्भाव नहीं आता, साल में केवल एक दिन इनको हम याद करते हैं। और बारहवें कुसुमासव सखा, और इसमें गौरलीला में खोला बेच सीधर, इनका भी तिरुभाव आता है हमारे वैष्णव कैलेंडर में, साल में एक दिन आता है इनको याद करने का, है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए, और ऐसे दिनों में हमें विशेष रूप से इनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है कि वैसे कृपा हमको गुरु परंपरा के द्वारा ही प्राप्त होती है, डायरेक्ट हम कृपा नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे दिनों में इनकी डायरेक्ट कृपा का द्वार खुला रहता है, तो हम डायरेक्ट इनसे कृपा ले सकते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा अवसर है ना। तो ऐसे दिनों में यदि संभव हो सके तो पूरा जो प्रवचन है वो इनके ऐसे महापुरुषों के बारे में हमें सुनना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, यथासंभव जितना याद कर सकें हमें याद करना चाहिए इनके बारे में। अब देखिए एक बात और भी है विशेष, मतलब जो मिलान हो रहा है कि इन दोनों का तिरुभाव एक ही दिन आ रहा है, आज के दिन आ रहा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि एक ही दिन ना हुआ हो, अलग अलग साल का अंतर हो, तिथि तो एक ही है दोनों के तिरुभाव की, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक ही स्थान में तिरुभाव हुआ हो दोनों का और एक ही वर्ष में हुआ हो, वर्ष अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन तिथि आज दोनों की हर साल एक ही दिन पड़ती है, तिथि तिरुभाव तिथि एक ही आती है। और दूसरी बात और भी है, तिरुभाव दोनों का एक तिथि में आया है और नाम भी एक जैसे हैं, ब्रज लीला में क्या नाम है, महाबाहु और सुबाहु, महाबाहु सुबाहु एक जैसे नाम लगते हैं ना, जोड़ी जोड़ी जैसे लगते हैं ना, जोड़ी हैं जैसे जोड़ी ललिता विशाखा, है ना, रंग देवी सुदेवी, ये राधा कृष्ण की सखियां हैं, है ना, और जोड़ी जय विजय, है ना, और जोड़ी नंद सुनंद, और जोड़ी पुण्यशील सुशील, ये वैकुंठ के जो है भगवान के सेवक हैं। तो ऐसे दो दो की जोड़ियों में जो है ये भी एक जोड़ी मालूम पड़ते हैं, है ना, महाबाहु और सुबाहु एक जैसे नाम है, है ना, एक जैसे नाम भी है और एक ही दिन जो है दोनों की तिरुभाव तिथि पड़ रही है ना। तो महाबाहु सखा कौन है गौरलीला में, महेश पंडित, महेश पंडित महाबाहु सखा है, ठीक है। तो पहले हम महेश पंडित के बारे में जहाँ जहाँ जो लिखा हुआ है वो हम सुनने का प्रयास करेंगे, महेश पंडित। तो देखिए सबसे पहले तो चैतन्य चरितामृत में आदिलीला अध्याय 11 की पयार संख्या 32 में महेश पंडित के बारे में लिखा हुआ है। ये नित्यानंद की शाखा में आते हैं, ये सभी सखा जो है नित्यानंद प्रभु की शाखा में आते हैं। चैतन्य वृक्ष में, चैतन्य वृक्ष में मतलब जितने भी शाखाएं हैं, अद्वैताचार्य की एक शाखा है तो उस शाखा में बहुत से भक्त लोग जुड़े हुए हैं, एक शाखा श्रीवास पंडित की उस शाखा में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से एक शाखा नित्यानंद प्रभु की भी है उसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं, है ना। ये चैतन्य वृक्ष है जिसमें कृष्ण प्रेम के फल पैदा होते हैं, तो इसलिए शाखाएँ हैं ये। तो शाखा में जो है नित्यानंद प्रभु की जो शाखा है वो सबसे बड़ी शाखा है, बहुत बड़ी शाखा है चैतन्य वृक्ष में, सबसे बड़ी शाखा जो है वो है तो कौन सी है, नित्यानंद प्रभु की है। तो ये जो अध्याय 11 है आदिलीला का, इसमें नित्यानंद प्रभु की शाखा का वर्णन है कि नित्यानंद प्रभु की मतलब शाखा में कितने भक्त जुड़े हुए हैं, नित्यानंद प्रभु से जुड़े हुए हैं। तो उनमें से जो है सातवें जो है गोपाल महेश पंडित हैं, 12 गोपालों में सातवें गोपाल महेश पंडित हैं। ये बहुत उदार थे और ढक्का बजने पर कृष्ण प्रेम उन्मत्त होकर नाचा करते थे, ढक्का ढक्का बजे तो इनको जो है बहुत प्रेम उत्पन्न होता था और नृत्य करते थे, कृष्ण प्रेम नृत्य करते थे ढक्का बजने से, है ढक्का जो है, गांव वाले जानते हैं ढक्का जो है जिसमें ढक ढक की आवाज हो, कुछ ऐसा ही होगा यंत्र, बजाने वाला यंत्र जिसमें ढक ढक की आवाज होती है। तो गांव वालों का जीवन बड़ा सरल होता है, जो गौएं चराते हैं गांव के निवासी हैं, तो उनको जो है कोई वो पोप संगीत नहीं चाहिए, या वो जो है कौन कौन सा संगीत है आजकल आता है ना, पोप म्यूजिक और कौन सा रॉक म्यूजिक, ये सब नहीं चाहिए उनको। हाँ, रॉक बैंड पोप है ना, ये सब म्यूजिक नहीं चाहिए उनको। तो ढक्का ढक 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 की आवाज़ हो तो उसी में ही उनको जो है कृष्ण प्रेम उनका जो है निकलने लगता है। तो ये महेश पंडित जो है ढक्का जो है जब ध्वनि होती है तो ये प्रेम में जो है मतवाले होकर के नृत्य करते हैं, कृष्ण प्रेम उन्मत्त होकर के नृत्य करते हैं, है ना। तो कृष्ण प्रेमी भक्तों का जो है एक अलग ही स्वभाव होता है, कुछ अलग ही उनकी जो है रुचि होती है। तो वो हम लोग नहीं जान सकते कि भाई क्यों है, लेकिन अपनी अपनी रुचि है। तो ये जो महेश पंडित हैं इनकी रुचि ढक्का बजने में विशेष है, और जहाँ ढक्का बजे तो यहाँ जो है प्रेम में नृत्य करते हैं, कृष्ण प्रेम में नृत्य करते हैं, उछलते हैं, उछल उछल के। तो इसमें प्यार है, महेश पंडित ब्रजेर उदारे गोपाल, ढक्का वादे नृत्य करे प्रेमे मातुयान। क्या महेश पंडित ब्रजेर उदार गोपाल, महेश पंडित ब्रज में उदार गोपाल है। उदार का मतलब है कि कृष्ण प्रेम देने में बहुत उदार है। उदारता का मतलब ये होता है कि बिना किसी भेदभाव के कोई लेना चाहता है कोई नहीं लेना चाहे तो भी दे, तो वो जो है उदार होता है ना। नहीं तो हम लोग देखते हैं भाई इसको नहीं देना चाहिए, इसमें ये योग्यता नहीं है ये, है ना, लेकिन उदार हैं, विचार ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि तो मतवाले हैं, पागल हैं कृष्ण में प्रेम में, जो पागल हो जाता है तो विचार नहीं कर सकता है, तो वो देता है ना। तो उदारता क्यों है? पागलपन के कारण। तो इसका बड़ा फायदा उठाना चाहिए ना, है? तो ये जो है पागल हैं कृष्ण प्रेम में, पागल हैं इसलिए जो है ये देते हैं कृष्ण प्रेम। तो इस पागलपन का फायदा उठाना चाहिए। इसमें लिखा है महेश पंडित ब्रजेर उदारे गोपाल, ढक्का बांधे नृत्य करे प्रेमे मातुयान। अब तात्पर्य में प्रभुपाल लिख रहे हैं तो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, चैतन्य चरितामृत का जो भाष्य लिखा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, उसका नाम है अनुभाष्य, है ना। महेश पंडित का गांव पालवाड़ा नदिया जिले में, नदिया जिले में पालवाड़ा गांव है। जिला कौन सा है? नदिया। जिला नदिया है और गांव कौन सा है? पालवाड़ा। उस जिले में चाकदह रेलवे स्टेशन से लगभग 1 मील दक्षिण जंगल के भीतर स्थित है गांव। इनका जो गांव है, पास ही गंगा नदी बहती है। कहा जाता है कि पहले महेश पंडित जिराट के पूर्व में मसीपुर या यसीपुर नामक गांव में रहते थे, और जब मसीपुर गंगा नदी के पाट में डूब गया, वो गांव ही डूब गया, गंगा नदी ने अपना धारा बदली और गांव को डुबा दिया, तो वहां के विग्रहों को पालवाड़ा गांव लाया गया, जो बेले डांगा बेरी ग्राम सुख सागर चांदुड़े तथा मनसा पोता नामक गांवों के बीच में बसा है। कौन सा गांव है? पालवाड़ा। कुल 14 गांव हैं और पूरा पड़ोस 5 नगर परगना कहलाता है। कहा जाता है कि महेश पंडित पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु द्वारा संपन्न समारोह में सम्मिलित हुए थे। तो पानीहाटी में जब नित्यानंद प्रभु आए थे तो बहुत बड़ी प्रसिद्ध घटना है, रघुनाथ दास गोस्वामी का चेला तिथि महोत्सव हुआ था। तो नित्यानंद प्रभु के संगी ये भी थे, तो नित्यानंद प्रभु के साथ जो चबूतरे के ऊपर बैठ करके भोजन कर रहे थे उनमें ये हैं, क्योंकि VIP हैं ये नित्यानंद प्रभु के साथ में, बाकी सब नीचे कर रहे हैं। तो नीचे एक घेरा, फिर उसके बाद और घेरा, फिर और घेरा, ऐसे कितने घेरे उस चबूतरे के चारों तरफ घेरे बने हुए थे जो भक्त लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। इस समारोह में नरोत्तम दास ठाकुर भी सम्मिलित हुए थे और महेश पंडित ने इस अवसर पर उन्हें देखा था।
महेश पंडित के मंदिर में गौर नित्यानंद, श्री गोपीनाथ, श्री मदन मोहन, राधा गोविंद के विग्रहों के साथ साथ सालग्राम शिला भी है। तो महेश पंडित का मंदिर है कहाँ पर है? पालवाड़ा में। तो प्रभुपाद ने इतना इनके विषय में लिखा है। तो चैतन्य चरितामृत के अलावा अब अन्यत्र कुछ लिखा हुआ है तो उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। ये है गौड़ी वैष्णव चरितामृत, तो बड़ी उपयोगी पुस्तक है। इसमें हमारे सब वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव के विषय में मतलब मिल जाता है, चाहे थोड़ा मिले लेकिन मिल जाता है। तो महेश पंडित के बारे में लिखा है, द्वादश गोपालों में सातवें श्री महेश पंडित हैं। इसमें देख रहे हैं सातवें नंबर में है? हाँ, सातवें नंबर में श्री कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते हुए एक विशाल दुंदुभी की धुन पर, विशाल दुंदुभी वही ढक्का, इसको लिखा विशाल दुंदुभी की धुन पर ढक्का, दुंदुभी की धुन पर एक उन्मत्त व्यक्ति की भांति नृत्य करते थे। श्री नित्यानंद प्रभु को विशेष तृतीया प्रिय महेश पंडित उनके संग यात्रा एवं प्रचार करते थे। इन्होंने नेताई गौरांग, राधा गोविंद एवं गोपीनाथ के अर्चा विग्रहों की स्थापना की। ब्रज लीला में ये ग्वाल बाल महाबाहु के रूप में कृष्ण बलराम की सेवा में रत हैं। इनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। अभी गौर गुणोदेश दीपिका में भी लिखा हुआ है इनके बारे में कुछ।
64 समाधि वृंदावन में।
हाँ देखिए, गौर गुणोदेश दीपिका में भी एक ही श्लोक में दोनों का नाम आता है। आज जिनका तिरुभाव है दो का, तो एक ही श्लोक में दोनों का नाम आता है। इसमें लिखा है, सुबाहुर यो ब्रजे गोपो दत्त उद्धारणाख्य कहा, महेश पंडिता श्रीमान महाबाहुर ब्रजे सखा। सुबाहुर यो ब्रजे गोपो, जो सुबाहु हैं ब्रज में गोप, वो उद्धारण दत्त नाम से गौरलीला में प्रकट हुए, और महेश पंडित श्रीमान महाबाहुर ब्रजे सखा, ब्रज में जो महाबाहु के सखा हैं वो महेश पंडित हैं। तो महेश पंडित के बारे में लिखा है कि श्री महेश पंडित यशोड़ा निवासी श्री जगदीश पंडित के भाई थे, ये द्वादश गोपालों में से एक थे। तो महेश पंडित के विषय में इतना ही हमें मिलता है, जितना हमने अभी पढ़ के सुनाया। अब उदाहरण दत्त ठाकुर के बारे में हम सुनेंगे, तो पहले चैतन्य चरितामृत से सुनेंगे। इनका नाम जो है चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 11 की पयार संख्या 41 में आता है। इसमें लिखा है, 12 गोपालों में से 11वें गोपाल उद्धारण दत्त ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के उन्नत भक्त थे। वे नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सभी प्रकार से सेवा करते थे। तैयार है। महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उद्धारण सर्व भावे सेवे नित्यानंदे रे चरण। बहुत मधुर है ये तैयार। क्या है? महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उदाहरण, श्रेष्ठ महाभागवत कौन? दत्त उदाहरण सर्व भावे सेवे नित्यानंदे रे चरण, नित्यानंद के चरणों को सब प्रकार के भावों से सेवा करते थे। महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उदाहरण सर्व भावे सेवे नित्यानंदे रे चरण। अब तात्पर्य में प्रभुपाल लिखते हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण दत्त का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से सुनिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, गौर गणोदेश दीपिका 129 के अनुसार उदाहरण दत्त ठाकुर पहले वृंदावन के सुबाहु नामक सखा थे, जो मैंने पढ़ के सुनाया। इनको पहले श्री उदाहरण दत्त कहते थे। ये सत्यग्राम के रहने वाले थे। सप्तग्राम में रघुनाथ दास गोस्वामी का भी जन्म हुआ था, जो हुगली जिले में 30 बीघा स्टेशन के निकट सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। सप्तग्राम उद्धारण ठाकुर के समय में सप्तग्राम एक बहुत बड़ा नगर था, जिसके अंतर्गत वासुदेवपुर, बांसबेड़िया, कृष्णपुर, नित्यानंदपुर, शिवपुर, शंखनगर तथा सप्तग्राम आते थे। तो सप्तग्राम एक गांव भी है और सप्तग्राम मिला करके भी है, सातों को मिला करके सातवां गांव भी सप्तग्राम के नाम से माना जाता है और सब मिला करके भी सप्तग्राम माना जाता है। कलकत्ता का विकास, सुनिए बड़े ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण है। कलकत्ता का विकास ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रभावशाली व्यापारिक जाति विशेषतया सुवर्ण वणिक जाति द्वारा किया गया। सुवर्ण वणिक, सुवर्ण वणिक मतलब जो सोने का व्यापार करें, सुवर्ण वणिक, वणिक माने व्यापारी, सुवर्ण माने सोने का, तो सुवर्ण वणिक जाति द्वारा किया गया। क्या? कलकत्ता का विकास, कलकत्ता का विकास विशेषतया सुवर्ण वणिक जाति द्वारा किया गया जब ब्रिटिश शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था? अंग्रेजों का, अंग्रेजों का शासन चल रहा था उस समय। जो सप्तग्राम से पूरे कलकत्ता में अपना व्यापार जमाने आ गए, पूरे कलकत्ता में अपना व्यापार जमा लिया, सप्तग्राम से आए थे, पूरे कलकत्ता में अपना व्यापार जमा लिया और अपने घर बना लिए, कलकत्ता में घर बना लिए। मतलब बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि प्रभुपाद इसी वंश में आए हैं, प्रभुपाद का जो जन्म है इनके ही वंश में हुआ है। सोचिए कलकत्ता में जो है इन लोगों ने अपने अपने घर बनाए सप्तग्राम से आकर के, और कलकत्ता का विकास किया इन्होंने बहुत। ये कलकत्ता के सप्तग्रामी व्यापारी कहलाते थे, सप्तग्रामी व्यापारी, कलकत्ता के सप्तग्रामी व्यापारी कहलाते थे। कलकत्ता में निवास करते हैं तो कलकत्ता के कहलाते हैं, कलकत्ता के व्यापारी हैं। लेकिन कौन से व्यापारी हैं? सप्तग्रामी, सप्तग्रामी व्यापारी हैं कलकत्ता के, और उनमें से अधिकांश लोग मल्लिक और सिल परिवारों के थे। मल्लिक सिल उदाहरण ठाकुर की ही तरह, आधे से ज्यादा कलकत्ता इसी जाति से संबंधित था। कलकत्ता आधा से ज्यादा जो जनसंख्या कलकत्ता की वो किस में थी? इन्हीं की, इन्हीं के परिवार के थे। हमारा पैतृक परिवार भी इसी जिले और जाति से था, हमारा मतलब प्रभुपाद का पैतृक परिवार इसी जिले और इसी जाति से था। कलकत्ता के मल्लिक दो परिवारों में विभाजित हैं, सिल परिवार और डे परिवार। उसमें से डे हैं प्रभुपाद कौन से परिवार के हैं? डे परिवार के हैं। डे परिवार के सारे मल्लिक मूलतः एक ही परिवार तथा गोत्र के हैं। हम भी डे परिवार शाखा से संबंधित हैं, जिसके सदस्यों को मुसलमान शासकों ने मल्लिक की पदवी दे दी थी। मल्लिक मुसलमान, पहले मुसलमानों का शासन था तो मल्लिक की पदवी दे दी थी इन लोगों को। मल्लिक, मल्लिक मतलब मुसलमानों के शासन, मालिक मतलब सम्मान के लिए मल्लिक की उपाधि मिली थी, है ना। ये साकार मल्लिक, सनातन गोस्वामी को साकार मल्लिक कहते हैं। तो मुसलमान शासन में जो है कोई हिंदू को जो है सम्मान दिया जाता है तो मल्लिक की उपाधि दी जाती थी, तो मल्लिक कहलाते थे। चैतन्य भागवत अंत खंड अध्याय 5 में कहा गया है कि धारण दत्त एक महान और उदार वैष्णव थे। ये नित्यानंद प्रभु की पूजा करने का अधिकार लेकर उत्पन्न हुए थे, पहले से अधिकार ले लिया, जन्म लेने से पहले ही नित्यानंद प्रभु की सेवा का अधिकार ले लिया इन्होंने। मतलब उन्होंने पहले से ही शर्त रखी थी कि मैं गोलोक धाम से अगर पृथ्वी में जन्म लूंगा तो नित्यानंद प्रभु की सेवा में रहूंगा, तो पहले से अधिकार ले लिया था, तब जन्म लिया, है ना। ये भी कहा गया है कि नित्यानंद प्रभु खड़दा में कुछ काल तक रहने के बाद सप्तग्राम गए और वहां पर उदाहरण दत्त के मकान में ठहरे। सप्तग्राम में उदाहरण दत्त रहते थे तो उनके मकान में ठहरे कौन? नित्यानंद प्रभु। उदाहरण दत्त का संबंध जिस स्वर्ण वणिक जाति से था वो वास्तव में वैष्णव जाति थी। इसके सदस्य साहूकार और स्वर्ण के व्यापारी थे। और नित्यानंद प्रभु ने तो पवित्र कर दिया ना पूरी जाति को, हाँ वैष्णव बना दिया सब। बहुत काल पूर्व बल्लाल सेन और सुवर्ण वणिक जाति में बहुत बड़े साहूकार गौरी सेन में अनबन हो गई, कुछ कारण से अनबन हो गई। बल्लाल सेन जो है मुसलमान शासक था होगा, और साहूकार थे गौरी सेन, सुवर्ण वणिक जाति के थे गौरी सेन। अनमन हो गई। क्यों? बल्लाल सेन गौरी सेन से उधार लेकर मनमाना खर्चा करते थे, इसलिए गौरी सेन ने धन देना बंद कर दिया। बल्लाल सेन ने इसका बदला स्वर्ण वणिकों की जाति को, स्वर्ण वणिकों को जाति से बहिष्कृत कराने का षड्यंत्र बनाकर किया। अब बल्लाल सेन जो है इनको जाति से निकलवाने का षड्यंत्र किया, तब से ये उच्च जाति अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों से बहिष्कृत कर दिए गए स्वर्ण वणिक। अब ये आप मतलब ना तो ब्राह्मणों में, ना वैश्यों में और ना क्षत्रियों में ये माने गए, किंतु श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से स्वर्ण वणिक जाति फिर से ऊपर उठ गई। स्वर्ण वणिक ये जो है मतलब व्यापारी, तो वैसे वणिक का मतलब वैश्य जाति, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों में से इनको निकाल दिया गया, तो फिर चौथा ही रहा, क्या रहा? शूद्र। तो शूद्र में आ गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से फिर से ये समाज में बहुत सम्मानित हो गए। चैतन्य भागवत में कहा गया है यतेक वणिक कुल उद्धारण, यतेक वणिक कुल उद्धारण है ते पवित्र है युधा नाहे के हाते। इसमें संदेह नहीं कि सुवर्ण वणिक समाज के सारे सदस्य श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा फिर से पवित्र बना दिए गए। सप्तग्राम में अभी श्री चैतन्य महाप्रभु का षडभुजी विग्रह है, इनका स्थान उदाहरण दत्त का स्थान सप्तग्राम, अभी भी षडभुजी विग्रह। षडभुजी विग्रह मतलब छह भुजाओं का, चैतन्य महाप्रभु का छह भुजाओं की मूर्ति वहां पर है, जिसकी पूजा उदाहरण दत्त ठाकुर स्वयं करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के दाएं नित्यानंद प्रभु का और बाएं गदाधर प्रभु का विग्रह है सप्तग्राम में अभी भी। षडभुज चैतन्य महाप्रभु हैं छह भुजाओं के, और दाएं तरफ कौन? नित्यानंद प्रभु, और बाएं तरफ गदाधर, है ना, मतलब वही है लक्ष्मण सीताराम लक्ष्मण, है ना। तो रामचंद्र चैतन्य महाप्रभु हैं, और दाएं तरफ लक्ष्मण तो नित्यानंद प्रभु हैं, और बाएं तरफ सीता तो गदाधर पंडित हैं, है ना। इसके अतिरिक्त राधा गोविंद मूर्ति और सालग्राम शिला भी है, और सिंहासन के नीचे श्री उदाहरण दत्त ठाकुर की छवि है। अब मंदिर के सामने एक बड़ा सा हॉल है, और इसके सामने माधवी लता का पौधा लगा है। माधवी लता बहुत विशेष आती है, कृष्ण लीला में इसका बहुत नाम आता है माधवी लता। ये मंदिर अत्यंत छायादार शीतल और अच्छी जगह पर स्थित है। सन 1967 में जब हम अमेरिका से लौटे, प्रभुपाद कह रहे हैं, सुन रहे हैं सब लोग, क्या सुन? सन 1967 में जब हम अमेरिका से लौटे, तब इस मंदिर की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने यहाँ आने के लिए हमें बुलाया, प्रभुपाद कह रहे हैं हमको बुलाया, और इस तरह हमें अपने कुछ अमेरिकी शिष्यों सहित इस मंदिर को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। कहाँ पर, कौन सा स्थान? सप्तग्राम। पहले अपने बाल्यकाल में हमने अपने माता पिता के साथ इस मंदिर के दर्शन किए थे, फिर 1967 में प्रभुपाद कितनी अवस्था के हो गए, 71 साल की अवस्था में फिर से दर्शन किए, क्योंकि सुवर्ण वणिक जाति के सारे लोग उदाहरण दत्त ठाकुर के इस मंदिर में विशेष रुचि दिखलाते हैं, अपने ही जाति का, अपने ही समाज का ये मंदिर है। तो प्रभुपाद जो है फिर गए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, 1876 ईस्वी में निताई दास नामक एक बाबा जी ने इस मंदिर के लिए 12 बीघे लगभग 4 एकड़ भूमि दान में प्राप्त की थी। 4 एकड़ काफी होता है ना, यहाँ की कितनी भूमि है? आधा एकड़ है, सोचिए 4 एकड़ तो बहुत होता है ना। 4 एकड़ की भूमि निताई दास बाबा जी ने मंदिर के लिए दान में प्राप्त की। बाद में इस मंदिर की व्यवस्था गड़बड़ा गई, किंतु 1899 ईस्वी में हुगली के उप न्यायाधीश सुप्रसिद्ध बलराम मल्लिक और धनी सुवर्ण वणिक जाति के अनेक सदस्यों के सहयोग से मंदिर का प्रबंध काफी सुधर गया, क्योंकि वो उप न्यायाधीश थे, वो बलराम मल्लिक थे, मतलब अपने ही जाति के, तो उन्होंने फिर मंदिर की व्यवस्था अच्छी करी, और सुवर्ण वणिक जाति के बहुत सदस्यों से मिलकर के। अभी 50 वर्ष भी नहीं हुए, उदाहरण दत्त ठाकुर के परिवार के एक सदस्य जगमोहन दत्त के ने मंदिर में उदाहरण दत्त ठाकुर का काष्ठ का विग्रह स्थापित किया था, लकड़ी का बना हुआ विग्रह स्थापित किया, किंतु अब वो मूर्ति वहां नहीं है। इस समय उदाहरण दत्त ठाकुर की छवि की पूजा की जाती है, छवि का मतलब चित्र की पूजा की जाती है, वो मूर्ति नहीं है। कहा जाता है कि उदाहरण दत्त ठाकुर का काष्ठ विग्रह श्री मनमोहन दत्त उठा ले गए और अब श्रीनाथ दत्त द्वारा उसकी पूजा सालग्राम से लागे साथ साथ की जाती है। अब जहां भी हो उदाहरण दत्त ठाकुर नौहाटी में जो कटवा से 1.5 मील उत्तर में है एक बड़े जमींदार की जायदाद के दीवान थे। इस शाही परिवार के ध्वंस अवशेष अभी देहाट स्टेशन के निकट देखे जा सकते हैं। चूंकि उदाहरण दत्त ठाकुर जायदाद के प्रबंधक थे अतएव इसे उदाहरणपुर भी कहते हैं। उदाहरण दत्त ठाकुर ने नेताई गौर विग्रहों की स्थापना की थी जिन्हें बाद में जमींदार के घर ले जाया गया। जो वन ओ यारी बाढ़ कहलाता है, इसलिए उदाहरण दत्त ठाकुर आजीवन गृहस्थ बने रहे। इनके पिता का नाम श्रीकर दत्त था और माता का नाम भद्रावती था और पुत्र का नाम श्रीनिवास दत्त था। तीन नाम और हैं, पिता का नाम क्या श्रीकर दत्त, माता का नाम भद्रावती और पुत्र का नाम श्रीनिवास दत्त। तो इतना प्रभुपाद ने लिखा है इनके बारे में और अन्यत्र भी है। उदाहरण दत्त ठाकुर इस महानिश स्वामी की लिखित पुस्तक में द्वादश गोपालों में से एक उदाहरण दत्त ठाकुर सात गांवों यानी सप्त ग्राम के में निवास करते थे। स्वर्ण वडिकों के परिवार में सुख साधन के मध्य पले बढ़े उदाहरण दत्त ने कालांतर में विवाह किया तथा एक धनाढ्य राजमंत्री के रूप में कार्य किया। वो स्थान जहाँ ये कार्यरत थे आज इनके सम्मानार्थ उदाहरणपुर के नाम से विख्यात है। नित्यानंद प्रभु प्रायः इनके घर में वास करते थे तथा इनके हाथ से भोजन स्वीकार करते थे। सप्तग्राम में प्रेम नाम संकीर्तन कर नित्यानंद प्रभु ने साहूकारों और स्वर्ण वणिकों के संपूर्ण समाज का निस्तार कर दिया। उदाहरण दत्त के कथनानुसार सप्तग्राम ऐसी पावन भूमि है कि उसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सप्तग्राम जब ये 26 वर्ष के थे इनकी पत्नी का अकस्मात देहांत हो गया। इनकी पत्नी का उदाहरण दत्त ठाकुर की, तो इन्होंने नित्यानंद प्रभु का संग करने और श्री कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करने हेतु अपना सर्वस्व त्याग दिया। अपनी पत्नी की मृत्यु हुई तो इससे शोक नहीं हुआ बल्कि और आनंद आया कि अच्छा है नित्यानंद प्रभु की सेवा में दिन रात रहना, मतलब एक बंधन दूर हो गया। तो पत्नी की मृत्यु से जो है इन्होंने दुख नहीं माना बल्कि क्या माना, अच्छा अवसर मिल गया, बंधन से छूट गया मैं, अब नित्यानंद प्रभु की सेवा में दिन रात रहूंगा। तो उन्होंने फिर सब कुछ त्याग दिया और नित्यानंद प्रभु के संग में फिर दिन रात यात्रा करते रहे। इन्होंने स्वयं षडभुज महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित के अर्चा विग्रहों की स्थापना और पूजा अर्चना की है ना, वही बात दोबारा आ रही है। ये ब्रज लीला में स्वभाव सखा के रूप में भगवान बलदेव की सेवा करते हैं। इनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। नित्यानंद प्रभु के एक महान भक्त जिन्होंने सर्वतोभावेन उनकी आराधना की, ऐसे भक्त के रूप में उदाहरण दत्त का कीर्तिगान करने के उपरांत कृष्णदास कविराज नित्यानंद प्रभु के समस्त भक्तों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं। अब देखिए नित्यानंद प्रभु के सभी भक्तों की प्रशंसा में इनकी भी प्रशंसा आ रही है, तो सुनिए बड़े ध्यान से। कोई भी नित्यानंद प्रभु के अनंत अनुगत जनों की गणना नहीं कर सकता। नित्यानंद प्रभु के साथ कितने भक्त जुड़े हैं कोई गिनती नहीं है। मैंने तो अपने को पवित्र करने हेतु उनमें से कुछ के नाम लिए हैं। नित्यानंद प्रभु रूप वृक्ष की शाखाओं के रूप में ये नित्य पार्षद कृष्ण प्रेम रूप पके फलों से परिपूर्ण है। तो नित्यानंद प्रभु भी एक वृक्ष माने जा सकते हैं, हालांकि चैतन्य वृक्ष की एक शाखा है लेकिन शाखा को भी एक वृक्ष माना जा सकता है। तो उस वृक्ष में और शाखाएं निकलती हैं तो वो जो दूसरे भक्त हैं वो इस नित्यानंद प्रभु के रूप वृक्ष की कई शाखाएं हैं और इन सब शाखाओं में कृष्ण प्रेम के फल मिलते हैं। ये नित्य पार्षद कृष्ण प्रेम रूपी पके फलों से परिपूर्ण है। इन्होंने सबको ये फल प्रदान कर उन्हें शुद्ध भगवत प्रेम में निमग्न कर दिया। इन भक्तों में शाश्वत अनन्य कृष्ण प्रेम प्रदान करने की असीम क्षमता है। किन में? नितिन प्रभु के संगियों में ये किसी को भी कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। उदाहरण तो ठाकुर के बारे में और कुछ है मिलता है एक और भी स्थान है जिससे उदाहरण ठाकुर के बारे में मिलता है। 15वीं शताब्दी के अंत में बंगाल के हुगली जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित सत्यग्राम नामक एक समृद्धिशाली नगर था। श्रीकर दत्त नामक एक ऐश्वर्यशाली व्यापारी वहां आकर निवास करने लगे। श्रीकर दत्त सांडिल्य गोत्रीय प्रसिद्ध वैश्य थे। ये अपनी सदाशयता और धर्म परायणता के कारण वहां के निवासियों के अत्यंत श्रद्धा पात्र हो गए। कौन? श्रीकर दत्त। कौन है? प्रधान दत्त के कौन है? पिता है। ये भूखों अनाथों और दुखियों की सहायता करने में कुछ भी उठा नहीं रखते थे। इनकी धर्म पत्नी भद्रावती भी सुशीला सच्चरित्रा पतिपरायणा और दया धर्मशीला थी। इन्हीं भद्रावती देवी के गर्भ से महाभागवत श्री उदाहरण दत्त का जन्म हुआ। समय पाकर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। पिता की मृत्यु के बाद उदाहरण दत्त ही उनकी संपूर्ण संपत्ति के अधिकारी हुए क्योंकि एकमात्र पुत्र थे। इसी समय उदाहरण दत्त ने एक जमींदारी खरीद कर उसे बसाकर अपने नाम अनुसार उसका नाम उदाहरणपुर रखा जो आज भी कटवा के समीप विद्यमान है। कटवा बहुत प्रसिद्ध स्थान है जहां पर क्या हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का मुंडन। पिता के समान पुत्र भी पूर्ण सदाचारी परोपकारी और भगवत भक्त निकला। इनके दया भाव के कारण बंगाल के तत्कालीन नवाब सुल्तान हुसैन शाह इनका बहुत सम्मान करते थे। तभी से मल्लिक उपाधि मिली ना इन हुसैन शाह के समय में। जिसमें भगवान चैतन्य देव के परम प्रिय सहचर श्री नित्यानंद जी बंगाल में हरि रामामृत पान करा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहेंगे माता के वचन से बंधे हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि मेरा जो कार्य है वो आप करिए क्योंकि आप ही मेरे शरीर हैं। किन से बोले? नित्यानंद प्रभु से बोले। तो नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से स्थान स्थान में भ्रमण करके हरिनाम का प्रचार करते हैं। तो बंगाल में नित्यानंद प्रभु हरिनाम अमृत का पान करा रहे थे। उस समय उनसे हरिनाम की दीक्षा लेकर ठाकुर उदाहरण दत्त प्रेम निमग्न हो गए। हरिनाम की दीक्षा उन्होंने किससे ली? नित्यानंद प्रभु से ली। और अपने पुत्र श्रीनिवास को अतुल संपत्ति का मालिक बनाकर श्री नीलाचल धाम को चल पड़े और श्री महाप्रभु का प्रसाद पाते हुए सुखपूर्वक वहीं निवास करने लगे। वहां से फिर श्री वृंदावन धाम में आकर रहने लगे। उदाहरण दत्त जाति के स्वर्ण वणिक थे। इन्होंने नित्यानंद के साथ बंगाल के बहुत से भागों में भ्रमण करके परम गुह है वैष्णव धर्म का प्रचार किया। जीव पर दया भगवान नाम में रुचि और विष्णु सेवा यही इनके प्रचार के विषय थे। तीन चीजें वैष्णव धर्म के तीन उपदेश हैं। पहला है जीव दया नामे रुचि वैष्णव सेवन है ना। जीवों पर दया भगवान नाम में रुचि और वैष्णव सेवा यही तीन चीजों का प्रचार करते थे उदाहरण दत्त। इस प्रकार 57 वर्ष की अवस्था में श्री वृंदावन धाम में उन्होंने यह लीला समाप्त की। आज भी वृंदावन धाम में बंसी भट्ट के निकट श्री उदाहरण दत्त का प्रसिद्ध समाधि मंदिर बना है और प्रतिवर्ष हजारों यात्री इनके समाधि मंदिर पर श्रद्धापूर्ण पुष्पांजलि चढ़ाकर अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो गौर गणोदेश दीप का भी लिखा हुआ है। उदाहरण दत्त भी द्वादश गोपालों में से एक हैं। ये सत्यग्राम निवासी थे और स्वर्ण का व्यापार करने वाले वणिक थे। इनके पिता का नाम श्रीकर दत्त था, माता का नाम भद्रावती, पुत्र का नाम श्रीनिवास। श्री नित्यानंद प्रभु के ये सनातन प्रभु के पार्षद थे, विपुल संपत्ति, पुत्र, स्त्री, ऐश्वर्य को त्याग कर नित्यानंद प्रभु के साथ ही सदैव विचरण करते थे। एक बार किसी ने श्री नित्यानंद प्रभु से पूछा कि प्रभुपाद आपकी रसोई कौन करता है, किसी ने पूछा, किससे पूछा, नित्यानंद प्रभु से पूछा कि प्रभुपाद आपकी रसोई कौन करता है। प्रभु बोले मैं स्वयं करता हूँ, अन्यथा श्री उदाहरण दत्त करता है। नित्यानंद प्रभु या तो खुद बना के मैं खाता हूँ या फिर कौन बनाता मेरे लिए, उदाहरण दत्त। बाद में ये उदाहरणपुर नामक गांव में वास करते थे, आज भी वहाँ इनके द्वारा प्रतिष्ठित श्री निताई गौर के विग्रह हैं। पास में इनकी समाधि भी है। सप्तग्राम में एक प्राचीन माधवी लता का वृक्ष है, नितिन प्रभु ने इसका रोपण किया था। महेश पंडित, अच्छा इस प्रकार से इनके विषय में कुछ बातें हमने सुनी है ना। तो अभी कुछ समय है, तो अभी कुछ दिन पहले जब काला कृष्णदास का तिरुभाव दिवस आया था, तो उस दिन एक बड़ी अद्भुत लीला हुई थी, तो वो जो है लिखित रूप में जो है वो है हमारे पास में, तो सुनाएंगे आपको, तो ये आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। माइक दे दो। है जी, ये लीला हमारे मंदिर में हुई थी काला कृष्णदास के तुर्भाव दिवस के अवसर पर। हाँ सुनिए माइक। अच्छा हैंड माइक है। इस लीला में बहुत रहस्य है, बड़ी गहराई है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत अद्भुत है ये लीला है। बिना माइक नहीं सुनाना, माइक के सुना। ये तो माइक नहीं, ये माइक ले लो।